हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अनाही और रूहान दोनों ही डॉक्टर रश्मि के क्लिनिक से बाहर आ चुके थे। रूहान ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, आप सच में मेरे साथ जंगल में जाना चाहती है ना? कहीं फिर आपको ये तो नहीं लगेगा कि मेरी वजह से आपका काम भी अधूरा रह जाता है? आप टाइम पर ऑफिस भी नहीं जा पाते हैं। मैं खुद तो कोई काम करता नहीं हूँ और आपको भी नहीं करने देता हूँ। इतना बोलते बोलते रूहान ने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। अनाही को रूहान की ऐसी मासूम बच्चों वाली बातें सुनकर उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए उसके बगल में बैठकर कहा, नहीं रूहान जी, ऐसा कुछ नहीं है। रूहान ने गहरी सांस लेकर कहा, वैसे मुझे लगता है कि मैडम जी आप मुझसे सच नहीं बोलती हैं। आपको लगता है कि मुझे बुरा लग जाएगा, मैं रोने लगूंगा या फिर मुझे हर्ट हो जाएगा, इसलिए आप मुझे आधी अधूरी बातें बताती हैं। अनाही ने हैरानी से रूहान की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है रूहान जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने तो सब कुछ सच सच ही बताया है आपको। मैं घर पर थी लंच टाइम तक, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना था और तभी मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं। मैं आपके पास आ गई और मैंने हॉलिडे ले लिया। वैसे भी ऑफिस में जूली है, वो सब कुछ संभाल सकती है। मेरी इतनी कोई खास भी ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में मैं एक छुट्टी तो ले ही सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर रूहान ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और उनकी गाड़ी जंगल की तरफ बढ़ गई। साथ में रूहान ने अपने फ़ोन से मोहिनी को भी मैसेज कर दिया था कि अब जंगल में और कोई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मैडम जी के साथ आ रहा है। जंगल की ओर जाती संकरी सड़क पर धूप पैरों की डालियों से छन छन कर गाड़ी के अंदर पड़ रही थी। अनाही खिड़की से बाहर देखते हुए हल्की सी मुस्कान में खोई हुई थी, जबकि रूहान बार बार चुपके से उसकी ओर नज़रें घुमा रहा था, जैसे किसी बच्चे ने कोई बड़ा सरप्राइज छिपाया हो और अब इंतज़ार करे कि सामने वाला कब चौंकेगा। करीब 20 मिनट बाद गाड़ी एक शांत घने पेड़ों के बीच बने खुले से रास्ते पर धीमी हो गई। अनाही ने चारों तरफ देखा। जंगल पहले से ज़्यादा शांत लग रहा था। हवा में मिट्टी और जंगली फूलों की खुशबू खुली हुई थी। पिछली बार जब वो रूहान के साथ यहाँ आई थी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, इसीलिए वो हर चीज़ को बारीकी से नहीं देख पाई थी, लेकिन अभी वो सब कुछ अच्छे से देख पा रही थी। वाकई में ये काफ़ी खूबसूरत और शांत जगह थी, जो किसी के भी दिल को सुकून पहुंचा सकती थी। थोड़ी देर बाद ही रूहान एक जगह ले जाकर गाड़ी रोक देता है। वो उतरकर फौरन उसकी साइड का दरवाज़ा खोलता है, बिल्कुल ऐसी केयर के साथ जैसे वो किसी कीमती चीज़ को संभाल रहा हो। अनाही मुस्कुराकर बाहर उतर जाती है और जैसे ही उसने सामने देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। पेड़ों के बीच एक छोटा सा क्लियरिंग था, जहाँ ज़मीन पर हल्के गुलाबी और सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियाँ बिखरी थीं। पेड़ों पर छोटी छोटी फेरी लाइट्स लिपटी थीं, जो शाम होते होते और ज़्यादा चमकती। बीच में एक लकड़ी की छोटी सी टेबल थी, उस पर दो प्लेटें, फ्रूट जूस और एक प्यारा सा फ्लावर जार रखा था। पास में एक नीले कपड़े का पिकनिक मैट बिछा था, जिस पर दो कुशन रखे थे। सब कुछ बिल्कुल सादा पर बहुत दिल से सजाया गया था। अनाही की आँखें अनायास ही फैल गईं। ये सब आपने? रूहान ने अपनी उंगलियाँ पीछे की तरफ खुजाते हुए शर्माते हुए कहा, हाँ मतलब मैंने ही करवाया, मोहिनी ने थोड़ी मदद की, पर आइडिया मेरा था, क्योंकि आप बहुत टेंशन में रहती हो और मुझे लगा कि आपको थोड़ी थोड़ी सरप्राइज डेट मिलनी चाहिए। अनाही बिना कुछ कहे उसे देखती रही। उसकी मासूमियत, उसकी कोशिश और उसका बच्चा सा प्यार दिल को छू गया। रूहान ने आगे बढ़कर धीरे से एक कुर्सी उसकी ओर खींची। बैठिए मैडम जी, ये हमारी छोटी सी डेट है, पहली और शायद, बोलते बोलते रूहान बीच में रुक गया। अनाही ने कन्फ्यूजन में उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से पूछा, और शायद क्या रूहान जी? रूहान ने हल्की सी सांस ली, और शायद अगर आपको अच्छा लगे तो आखिरी भी नहीं होगी। अनाही के गालों पर अनजाने में मुस्कान खिल गई। वो बैठ गई और रूहान उसकी हर हरकत को ऐसे देख रहा था जैसे उसके लिए ये दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा हो। बहुत प्यारा है रूहान जी, उसने धीमी आवाज़ में कहा, बहुत ज़्यादा। रूहान का चेहरा चमक उठा, जैसे किसी ने उसकी पूरी मेहनत को गोल्ड स्टार दे दिया हो। अनाही ने टेबल पर रखे सामान को देखा। वहाँ बीच में एक छोटा सा रेड कलर का केक रखा हुआ था, जिस पर वाइट फ्लावर्स थे और उस पर लिखा था, प्लीज़ स्माइल मैडम जी। ये लाइन बहुत अट्रैक्टिव थी। अनाही अचानक इसे पढ़कर मुस्कुरा उठी और फिर एक नज़र रूहान की तरफ देखा, जो अब काफ़ी नर्वस होते हुए उसके सामने वाली चेयर पर बैठ रहा था। चेयर पर बैठने के बाद रूहान ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, उतना ज़्यादा भी सुंदर नहीं बनाया जितना मैं बनाना चाहता था, एक तो दिन का वक्त है तो ये लाइट्स अजीब लग रही हैं। रात को ये ज्यादा चमकेंगी। आपको पता है अंधेरे में ये व्हाइट कलर वाली लाइट ज्यादा सुंदर लगती है और येलो कलर वाली भी। बाकी ये जो लाइट ग्रीन कलर वाली है ये इतनी ज्यादा नहीं चमकती है। रूहान एक्साइटेड होकर अनाही को एक एक चीज समझा रहा था। उसे इस तरह एक्साइटेड होते देखकर अनाही के होठों की स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसने आगे बढ़कर धीरे से रूहान का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम रात तक ही रुक सकते हैं रूहान जी, इतना भी कोई जरूरी काम नहीं है घर पर। ये सुनकर रूहान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने जल्दी से कहा, अगर आप यहाँ रुक जाएंगी तब तो और ज्यादा अच्छा होगा। आपको पता है रात को यहाँ जुगनू भी आते हैं और वो इतनी ज्यादा सुंदर लगते हैं। फिर हम दोनों यहाँ फोटोशूट भी करेंगे। अनाही ने धीरे से अपनी पलकें झपकाते हुए उसकी बात पर हामी भरकर कहा, हाँ जरूर, आपके पास कैमरा है क्या? रूहान ने जल्दी से कहा, अभी तो शाम होने में बहुत वक्त है, मैं किसी से कैमरा मंगवा लूंगा, आप फिक्र मत करिए। अनाही के होठों की स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसका पति कितना एक्साइटेड है उसकी डेट प्लानिंग के लिए। उसने इतना सब्र किया था और उसे सच में उसके सब्र का फल मिल गया था, जो बहुत ज्यादा पेशकीमती था। थोड़ी देर बातें करने के बाद अनाही केक कट करती है और पहली बाइट रूहान को खिलाती है। कहीं दूसरी तरफ 3 बजे कॉलेज छूट चुका था और विहा और वेदान दोनों कॉलेज से लौट रहे थे। रास्ते में विहा को छोले भटूरे का ठेला दिख गया और वो जल्दी से वेदांत को बोली, रुको रुको, मुझे वो खाना है। वेदांत ने आंखें छोटी करके रोड साइड लगे ठेले को देखकर कहा, वो हाइजीनिक नहीं है टोमेटो, मैं तुम्हें हेल्दी बनवाकर खिला दूंगा, यहाँ नहीं घर जाकर, अभी जिद मत करो बेटा। विहा छोटे बच्चों की तरह झटपट जाकर रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो वेदांत, आप मेरी एक भी बात नहीं मानते हो, प्लीज लेकर चलो ना वहां, मुझे वही खाना है और अभी खाना है। वेदांत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सच में उसकी बीवी कोई 5 साल की बच्ची ही लग रही थी। उसे अब निवेदिता की बातें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी कि उसे 2-2 बच्चों को एक साथ संभालना पड़ेगा। उसने थक हार कर एक गहरी सांस ली और फिर गाड़ी को एक तरफ लगाते हुए बोला, ठीक है मेरी माँ, चलो अब ऐसे छटपटाना बंद करो। उसके इतना कहते ही विहा का छटपटाना बिल्कुल बंद हो गया और वो खुश होते हुए अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर लगभग दौड़ते हुए उस ठेले वाले के पास गई। वेदांत ने उससे कहा, आप प्लीज भैया इसे थोड़ा हाइजीनिक बनाना। तभी विहा ने एक्साइटेड होते हुए कहा, और स्पाइसी बनाना, बिल्कुल तीखा सा, मुझे मीठा वाला पसंद नहीं है।
ठेले वाले ने खुश होते हुए उन दोनों को देखा, क्योंकि वो उसे बहुत ही अमीर ग्राहक लग रहे थे। बेचारे का दिन बन गया था आज का। उसने जल्दी से विहा की पसंद के छोले भटूरे बनाकर एक कागज की कटोरी में डालकर उसके हाथ में दे दिए। वेदांत ने आंखें छोटी करके उस कटोरी की तरफ देखा, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसे कभी नहीं खाया था। उसे ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन विहा को आदत थी ऐसे खाना खाने की, इसलिए वो तो खुश होकर खा रही थी। उसे खुश देखकर कहीं ना कहीं वेदांत के दिल में भी तसल्ली थी।